മോക്ഷമാർഗ സിനീതാരം ഭേത്താരം കർമ്മഭൂഭൃതാം ജ്ഞാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധയെ. बाईस परीक्षाओं का वर्णन है। अब एकांतेश्वाराम भवनादि प्रदेशेषु नवयौवन मद विभ्रम मदिरापान प्रमत्तासु प्रमदासु बाधमानासु कूर्मवत् संवृतेन्द्रिय हृदय विकारस्य ललित स्मित मृदुकथित सविलास वीक्षण प्रहसन मद मंथर गमन मन्मथ शरव्यापार विफली करणस्य स्त्री बाधा परीश सहन मवगंतव्यम्। अब एकांत स्थानों पर, जैसे आराम का अर्थ होता है बगीचा, भवन का अर्थ भवन होता है आदि, ऐसे एकांत प्रदेशों में, एकांत क्षेत्रों में, एकांत स्थानों में नव यौवन के मद से और विभ्रम से और मदिरापान से जो प्रमत्त है, अर्थात जिनको यौवन ने मदमत्त बना दिया है, ऐसी प्रमदासु बाधमानासु, ऐसी स्त्रियों के द्वारा जो कि बाधा पहुंचा रही हैं उनके प्रति कूर्मवत् संवृत्तेन्द्रिय हृदय विकारस्य, कछुए के समान इंद्रिय जनित विकार और हृदय में विकार, इन दोनों को संवृत कर लिया है जिन्होंने, अर्थात न तो जिनके शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है उन स्त्रियों के उपद्रवों के होने पर, और न ही जिनके हृदय में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, फिर उनके ललित स्मित नए नए प्रकार से मुस्कुराहट, फिर मृदु कथित यानी धीमी धीमी आवाज में कोमल कोमल वचन बोलना, फिर सविलास वीक्षण और विलास सहित दृष्टिपात करना, ऐसे उपद्रव उनके द्वारा हो रहे हों, और फिर प्रहसन, फिर हंसना, फिर मदमंथर गमन, बिल्कुल नशीली चाल में धीमे धीमे चलना, ऐसे मन्मथ शरब व्यापार, काम के बाणों की चेष्टाओं को जिन्होंने विफलीकरण से विफल कर डाला है, यानी इतनी सब प्रवृत्तियां होने के बाद भी उनको कोई असर नहीं है, ऐसे मुनि के स्त्री बाधा परिषह सहनम अवगंतव्यम, स्त्री बाधा संबंधी परिषह जो होता है उसको सहन कर लेते हो, निर्विकार रहते हैं, ये उनका परिचय विजय है। इसके बाद दीर्घ काल मुषित गुरुकुल ब्रह्मचर्यस्य, दीर्घ काल तक जिन्होंने गुरुओं के समूह में, साधुओं के संग में ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया हुआ है, और अधिगत बंध मोक्ष पदार्थ तत्वस्य, और जिन्होंने बंध और मोक्ष पदार्थ के तत्व अर्थात स्वरूप को अधिगत कर लिया है, भली भांति जान लिया है, और संयमायतन भक्ति हेतोर देशांतरातिथेर गुरुणाभ्यनुज्ञातस्य पवनवन निःसंगतामंगी कुर्वत, संयम के आयतन भूत अथवा संयम के हेतु और आयतनों की भक्ति हेतु जो देशांतर के अतिथि हैं, अर्थात स्थान से स्थानांतर तक गमन करके अतिथि के रूप में नए नए स्थानों पर जा रहे हैं, और गुरुणा अभ्यनुज्ञातस्य, गुरु की अनुमति लिए हुए हैं, पवनवन निस्संगताम अंगीकुर्वत, हवा के समान निस्संग पने को अंगीकार करते हुए वे साधु बहुशोन शनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्यागादि बाधा परिक्लांत कायस्य, बहुत बार अनशन अर्थात उपवास, अवमौदर्य अर्थात पेट न भर करके भोजन लेना, और वृत्ति परिसंख्यान का अर्थ आंकड़ी लेकर के कुछ संख्याएं बनाकर फिर आहारचर्या करना, रस परित्याग रसों का परित्याग करना आदि जो बाधाएं हैं शरीर के लिए, तो ये बाधाएं हैं ना, तो इन बाधाओं से परिक्लांत कायस्य, जिनकी काया परिक्लांत हो गई है, मुरझा गई है, एक प्रकार से थक गई है, और देश काल प्रमाणोपेत मध्वगमनम, क्या सुंदर बात लिखी है, देश और काल, यानी देश का अर्थ होता है क्षेत्र और काल का अर्थ होता है ऋतु, तो कितने क्षेत्र तक किस ऋतु में गमन करना होता है, तो प्रमाणोपेत अध्वगमनम, मार्ग पर वो उतने प्रमाण में ही गमन करते हैं। देखिए मान लो कभी हम एक दिन में 30 किलोमीटर चल जाए, 40 किलोमीटर चले जाए, तो जो अनजान भक्त लोग हैं वो तो डायरी में लिख लेंगे तारीख समय और स्थान, और इसको एक कीर्तिमान समझेंगे, इसको एक कीर्ति का माध्यम बना लेंगे और प्रशंसा करेंगे, ये देखो कितना चल गए महाराज जी। पर यहां आचार्य कहते हैं कि किस ऋतु में कितने क्षेत्र तक गमन करना, उसके प्रमाण से ही, प्रमाणोपेत मध्वगम, उस प्रमाण से युक्त ही मार्ग पर गमन करने वाले हैं यो साधु, क्योंकि एक सीमा बताई है। जब वहां पर संगोष्ठी हुई थी श्रवण बेलगोल में, तब आचार्यों के मुख से ये बात आई थी कि अलग अलग ऋतुओं में सीमा का उल्लंघन करने पर प्रायश्चित होता है। उन्होंने बताया था कि बरसात में अगर प्रासुक मार्ग मिल रहा है आपको तो तीन कोस के अंदर ही चलना है, तीन कोस चलने से प्रायश्चित है। कोस का अर्थ होता है 3.25 किलोमीटर। अब अगर योजन को 13 किलोमीटर का मानते हैं तो फिर 3.25 किलोमीटर का एक कोस होता है, और योजन को 12 किलोमीटर का कुछ लोग मानते हैं तो उनके हिसाब से 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, क्योंकि 4 कोस का एक योजन तो फिक्स है, एक योजन में 4 कोस होते हैं, क्रोश बोलते हैं संस्कृत में उसको, तो वर्षा में 3 कोस और शीतकाल में 6 कोस, इससे दुगना है। और उष्ण काल में 9 कोस, तो इतना चलने पर प्रायश्चित है, इससे कम चलने पर नहीं है। हम पहले भी एक बार बतला चुके हैं कि जब इधर कुद्रेमुख पहाड़ी से जब आना पड़ा तो अष्टान्निका के पहले उतना गमन हो गया, मार्च वाली अष्टान्निका थी ना, तो उसमें अष्टान्निका क्रॉस हो जाए तो फिर ग्रीष्मकाल शुरू हो जाता है, तो अगर ग्रीष्मकाल में उतना गमन करते तो उतना प्रायश्चित नहीं होता, शीतकाल में गमन किया तो फिर प्रायश्चित हुआ था। तो अधिक चलना कोई गुण नहीं है, दोष है, अनजाने में चलते हैं पर उसमें अपन विचार करें तो फिर जब आगम में इसका निर्देश है कि नहीं चलना है तो कोई ना कोई हेतु है। ऐसे जो भी आचार्यों के वचन होते हैं वो कल्याणकारी होते हैं। अधिक चलने से फिर आवश्यकों में कमी आती है। बहुत अधिक चलने से शरीर में अतिश्रम हो जाएगा और अतिश्रम हो जाएगा तो फिर आवश्यकों में जो विशुद्धि और फिर उल्लास रहता है उसमें अंतर पड़ेगा। ऐसे और भी कारण बन सकते हैं, स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, कई बार पैरों को क्षति पहुंच जाती है, अनावश्यक क्षति पहुंच जाती है। तो ये कोई संवर निर्जरा का साधन नहीं है। चलने की क्षमता है, अलग बात है वो आपके पास, जिनके भी पास, लेकिन यहां पर आचार्य कह रहे हैं देश काल प्रमाणोपेत मध्वगमनम संयमा विरोधी, लेकिन और संयम से अविरुद्ध संयम विरोधी परिहरता, संयम के विरोधी जो भी स्थान है उनका परिहार करने वाले जो साधु हैं, और निराकृत पादावरणस्य, पैरों में किसी भी प्रकार के आवरण को जो निराकृत कर चुके हैं, यानी पैरों में कुछ भी नहीं पहनते, परुष शर्करा कंटकादि व्यधन जात चरण खेदस्यापि कठोर कंकरी कांटे आदि जो पैरों में चुभते हैं, उन वस्तुओं से उत्पन्न हुआ है चरणों का खेद अर्थात पैर संबंधी पीड़ा, जिनको ऐसे सतह होते हुए भी पूर्वोचित यान वाहन आदि गमन अस्मर, तो पूर्व काल में जो यान वाहन आदि में गमन करते थे उसका स्मरण नहीं करते, और यथाकालम आवश्यका परिहाणि मास्कंदतश, ठीक समय पर आवश्यकों की अपरिहानि को प्राप्त होने वाले अर्थात आवश्यकों में हानि न होने देने वाले, समय पर ही अपने आवश्यकों को पूर्ण करने वाले साधु के चर्या परिषह सहनम अवसेयम, चर्या परिषह को सहन करना निश्चित होता है। अब निषद्या परिषह, श्मशानोद्यान शून्यायतन गिरिगुहा गह्वरादिषु, गिरिगुहा गह्वरादिष्वनभ्यस्त पूर्वेषु निवसत, श्मशान उद्यान शून्य आयतन यानी बिल्कुल सुनसान आयतन जो धर्म क्षेत्र है वो है, और गिरिगुहा पहाड़ की गुफा, गह्वर अथवा पहाड़ में जो गह्वर हो जाते हैं छोटे छोटे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ बैठ सकते हैं रुक सकते हैं उतना छोटे से स्थान में, आदिशु आदिकों में जहाँ अनभ्यस्त पूर्वेशु पहले कभी अभ्यास नहीं किया था और अब एकदम रुकने की स्थिति बनी है, गह्वर का अर्थ वन भी होता है और एक ऐसी गुफा भी होती है जिसमें से अंदर आप आगे बहुत दूर तक के भी निकल सकते हैं, यहाँ पहुंचना कठिन होता है, एक छुपने का स्थान भी गह्वर कहलाता है, कई अर्थ दिए कोश में। गुफा को भी गह्वर कहते हैं लेकिन वहां गुहा लिखा है इसलिए यहां पर गह्वर का अर्थ उसका पर्यायवाची तो नहीं हो सकता, पर ऐसे स्थान लेना होगा। तो उन स्थानों में जहां पहले कभी अभ्यास नहीं किया था निवास करते हुए आदित्य प्रकाश स्वेंद्रिय ज्ञान परीक्षित प्रदेश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा और अपने इंद्रिय यानी आंखों के द्वारा अपने ज्ञान से परीक्षित स्थान पर कृत नियमक क्रियस्य, ऐसे स्थानों पर जाकर के अपने स्वाध्याय आदि नियम है सामायिक है और अन्य क्रियाएं हैं प्रतिक्रमण वगैरह उनको करने वाले निषद्याम नियमित काला कालमास्तित्वतः मास्तित्वतः स्थितवतः निश्चित काल तक के एक आसन में आस्थित रहने वाले, अर्थात आसन को न बदलने वाले, जैसे मान लो प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो प्रतिक्रमण काल तक के आसन को परिवर्तित नहीं करेंगे, ऐसे। और सिंह व्याघ्रादि विविध भीषण ध्वनि श्रवणात् निवृत्त भयस्य, सिंह की ध्वनि, व्याघ्रादिक की विविध भीषण ध्वनियां, उनके श्रवण से भी निवृत्त भयस्य, जिनको कोई डर नहीं है, वो कर रहे हैं अपनी आवाज, ठीक है, वो अपना भ्रमण कर रहे हैं, कोई बात नहीं, निर्भीक है। और चतुर्विध उपसर्ग सहनाद अप्रच्युत मोक्ष मार्गस्य, चारों प्रकार के उपसर्गों को सहनने करने से जो मोक्ष मार्ग से अप्रच्युत है, मोक्ष मार्ग जिनका स्थिर है, जो मार्ग से नीचे नहीं गिरे हैं, और वीरासनोत्कुटिकाद्यासनाद अविचलित विग्रहस्य, वीरासन से और उत्कुटिकादि आसनों से जिनका विग्रह अर्थात शरीर अविचलित है, यानी इतना सब होने पर भी जिनका आसन अचल है, और तत्कृत बाधा सहनम, और उस आसन से संबंधित जो बाधाएं होती है, आसन में कई बार पैरों में शून्यता आ जाती है, कई बार कुछ ऐसे स्थान जो ज्यादा जमीन के संपर्क में रहते हैं वहां पर विशेष पीड़ा होती है, तो वो निषद्या नाम का परिसर कहलाता है, और ऐसा करने वाले जो साधु हैं वो निषद्या परिसर पर विजयी होते हैं, उनकी निषद्या परिसर विजय इति निश्चयति, निश्चित होता है कि उनने निषद्या परिसर पर विजय प्राप्त की है। स्वाध्याय ध्यानाद्वश्रम परिखेति तस्य, स्वाध्याय से, ध्यान से, और अध्वश्रम यानी मार्ग के श्रम से जो परिखेदित हैं, थके हुए हैं, मौहूर्ति कीम खर विषम प्रचुर शर्करा कपाल संकटाति शीतोष्णेषु भूमि प्रदेशेषु, खर यानी रूखी, विषम यानी उबड़ खाबड़, प्रचुर शर्करा यानी बहुत कंकरीली, बारीक बारीक छोटे छोटे रेत के कण हैं, और कपाल यानी जो घड़े वगैरह फूट जाते हैं तो फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, संकटादि शीतोष्ण अति शीतोष्ण उनसे व्याप्त, और फिर अत्यंत शीत अथवा अत्यंत उष्ण भूमि प्रदेशेषु भूमि स्थानों पर, मौहूर्ति की निद्राम अनुभवतु, मात्र 48 मिनट तक की निद्रा का सेवन करने वाले जो साधु हैं वे यथाकृतैक पार्श्व दंडायिता दिशायिनः, एक करवट से अथवा दंडायित एक दंडे के समान शयन करने वाले, और प्राणी बाधा परिहारय परिहाराय पतित दारुवत व्यपगतासु वद अपरिवर्तमानस्य, क्या आचार्य पूज्यपाद स्वामी के ये वचन है, एकदम सामने वो चित्र आ जाता है, प्राणियों को बाधा न हो, प्राणी बाधा का परिहार करने के लिए पतित दारुवत गिरे गिरी हुई लकड़ी के समान एक मुहूर्त तक वो हिले बिना पड़े रहते हैं, किसके समान, व्यापगत आसुवत प्राण जिनके प्राण निकल चुके मृतक शय शव के समान, अपरिवर्त मानस जैसे लाश मुर्दा शव करवट नहीं लेता, वैसे अपरिवर्त मानस करवट नहीं लेते। ज्ञान भावना अवहित चेतसो, ज्ञान भावना में अवहित है चेतस जिनका, अर्थात ज्ञान भावना में ही लीन है मन जिनका, अच्छा इसमें भावन नहीं, अच्छा नीचे पाठ पाठ भेद दिया हुआ है, ज्ञान परिभावना, ठीक है, और अनुष्ठित व्यंतरादि विविधोपसर्गाद्यचलित विग्रहस्य, और जिन्होंने व्यंतरादि द्वारा किए गए विविध उपसर्ग से भी अपने आप को अचलित विग्रह रखा है, यानी वो शरीर को नहीं हिलाते, वो व्यंतर लोग गुदगुदी करते हैं, कभी कुछ और तरह से करते हैं, आवाजें करते हैं, लेकिन वो अपने शरीर को हिलाते नहीं है। और अनियमित कालाम तत्कृत बाधाम, अब उनके द्वारा की गई जो बाधा हो रही है उसका काल कोई नियमित नहीं है कि भाई हम 5 मिनट बाधा करेंगे, परीक्षा दे दो, ऐसा नहीं, कोई समय नहीं, उनकी कोई सीमा नहीं, सवेरे तक बाधा पहुंचा सकते हो। तो तत्कृत बाधाम क्षम मानस से, उनके द्वारा की गई बाधाओं बाधा को सहन करने वालों के शय्या परिषह क्षमा कथ्यते, शय्या परिषह जय अथवा उसको सहन करना कहा जाता है। क्षमा का अर्थ सहन करना भी है, यहां पर क्षमा का सहन करना है। फिर मिथ्या दर्शनो दृक्त, मिथ्या दर्शनो दृक्तामर्श परुषावज्ञा निंदा सभ्य वचनानी, मिथ्या दर्शन के उद्रेक से उत्पन्न अमर्ष यानी क्रोध, परुष यानी कठोर, और अवज्ञा यानी अपमानजनक, और निंदा यानी बुराई करने वाले, और असभ्य यानी जो शालीन लोग जो भाषा नहीं बोलते, ऐसे वचनों को क्रोधाग्नि शिखा प्रवर्धनानी, कैसे हैं ये वचन, क्रोध रूपी अग्नि की शिखा को और ऊंचा करने वाले हैं। अग्नि होती है तो उसकी एक शिखा होती है, यानी उसमें चोटी होती है अग्नि की, ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको शिखा बोलते हैं अग्नि की लॉ में, तो उसको प्रवर्धन आनी, उसको बढ़ाने वाले, ऐसे वचन इनको निशृण्वन्तोपि, निशृण्वतोपि अच्छी तरह सुनते हुए भी तदर्थेष्व समाहित चेतस, उनके अर्थों के प्रति अपने मन को तन्मय नहीं करते कि इसने ये जो गाली दी, इसने ये सब उल्टा सीधा बोला, क्या क्या बोला, विचार वहां मन नहीं लगाते। और सहसा तत्प्रतिकारम कर तुम अपि शक्नुवत, और तत्काल उनका प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी, प्रतिकार क्या, अगर एक ऐसे दृष्टि डाल दे तो वो अंधा हो जाए, वो उसका बोलना बंद हो जाए, इतनी रिद्धियां सिद्धियां साधुओं को प्राप्त रहती है तो कुछ भी कर सकते उसको। समर्थ होते हुए भी पाप कर्म विपाक मभिचिंत यतस, ये मेरे पाप कर्म का फल है, ऐसा विचार करते हैं, उसके अहित का विचार नहीं करते, उल्टा सीधा बोलने वाले की, ऐसा चिंतन करते हुए तान्याकर्ण्या उन वचनों को सुनकर के तपश्चरण भावना परस्य, तपश्चरण की भावना में तत्पर रहते हैं, और कषाय विष लव मात्रस्याप्यनवकाशम आत्महृदयम कुर्वत, कषाय रूपी विष का लव मात्र, यानी जो मिनिमम अमाउंट होता है उसको लव बोलते हैं, कषाय रूपी जहर का थोड़ा सा भी प्रमाण, अनवकाशम अपने हृदय में उसको अवकाश नहीं देते, ऐसे आत्महृदय में कुर्वत, अपने हृदय को ऐसा करते हुए कि उसमें ज्ञान की भावना ही भरी हुई है, उसके लिए जगह ही नहीं है कषाय के विष के लिए, क्या बात है। ऐसे करने वाले के, ऐसे साधु के आक्रोश परिषह सहन अवधार्यते, आक्रोश परिषह सहन करना अवधार्यते यानी निश्चयते, निश्चित किया जाता है। आचार्य महाराज देखिए हर परिषह के अंत में जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो भिन्न करते हैं, और भिन्न करने का अर्थ ये है कि उनके पास शब्द भंडार कितना विशाल है इसकी सूचना मिलती है, अर्थ एक ही है सभी के लेकिन शब्द भिन्न भिन्न रखते हैं। फिर निशित विशसन मुशल मुद्गर, निशित विशसन मुशल मुद्गरादि प्रहरणा प्रहरण ताड़न पीड़नादिभिर व्यापाद्यमान शरीरस्य, निशित विशसन पैनी तलवार, मूसल मुद्गर, इन औजारों से, इन हथियारों से, इन आयुधों से, आदि से और भी उसके अलावा हो सकते हैं कई ऐसे पदार्थ, इनसे ताड़न कोई मारता हो, पीड़न यानी कोई कुचलता हो आदि, इन हथियारों के प्रयोग से व्यापाद्यमान शरीर से, जिनका शरीर समाप्त किया जा रहा है, ऐसे वे साधु व्यापाद केशु मनागपि मनोविकार मकुर्वत, ऐसा करने वालों के प्रति थोड़ा भी मानसिक विकार न करते हुए, मम पुराकृत दुष्कर्म फलमिदमि मे वरा का किं कुर्वन्ति, मेरे पूर्वकृत दुष्कर्म का यह फल है, ये वराका यानी ये बेचारे किं कुर्वन्ति क्या कर सकते हैं। कितनी विशुद्धि होती होगी, शरीरमिदं जल बुद्बुद्वत् विशरण स्वभावम्, यह शरीर तो पानी के बुलबुले के समान विशरण स्वभाव वाला है, नश्वर है। व्यसन कारणम, संकटों का कारण है, व्यसन शब्द का संकट है। एतैर बाबाध्यते, तो ये लोग जो उपद्रवी लोग हैं ये इस शरीर को ही बाधित कर रहे हैं, बाबाध्यते अत्यधिक बाधित कर रहे हैं, तो शरीर ही इनके द्वारा अत्यधिक बाधित किया जा रहा है। संज्ञान दर्शन चरणानी चरित्राणी मम न केनचिद उपहन्यन्ते, मेरे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को तो कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी उनका हनन नहीं कर सकता। इति चिंतयते, ऐसा चिंतन करने वाले साधु के वासी तक्षण चंदनानुलेपन समदर्शन, बसूले से छीलने पर यानी उनके शरीर को जो कारपेंटर लोग लकड़ी छीलते ना घिस घिस करके, ऐसे औजार से भी अगर उनके शरीर को छील दिया जाए, अथवा चंदन अनुलेपन शरीर पर चंदन का अनुलेपन किया जाए, तो भी समदर्शन समान, दोनों को एक समान मानते। कैसे समान मानते होंगे, कि ये मेरे पुण्य पाप का फल है, पुण्य के फल से वो चंदन लगा रहा है, पाप के फल से छील रहा है, तो फिर है तो कर्म तो मेरा ही है। दोनों के प्रति समता रखने वाले, इसके प्रति राग नहीं उसके प्रति द्वेष नहीं, ऐसे साधु के वध परिशह क्षमा मन्यते। वध परिशह, वध का अर्थ यहां पर प्राण वध नहीं है लेकिन मारपीट है या इस प्रकार के उपद्रव हैं, उन पर विजय मानी जाती है। इसके उपरांत बाह्याभ्यंतर तपोनुष्ठान परस्य, बाहरी और अंतरंग तप के अनुष्ठान में जो तत्पर है, और तद भावना वशीन निस्सारी कृत मूर्ते ही, तपो भावना के प्रभाव से अर्थात अत्यधिक तपश्चरण करने के कारण निस्सारी कृत मूर्ते ही, जिन्होंने अपने शरीर का सार समाप्त कर दिया है यानी शरीर को बिल्कुल सुखा डाला है, और पट तपन ताप निष्पीत सार तरोरिव विरहित छायस्य, जैसे तीक्ष्ण तपन के ताप से, तीक्ष्ण सूर्य के, तपन शब्द का अर्थ सूर्य भी होता है, पटु तपन का अर्थ होता है तीक्ष्ण सूर्य, और उसके ताप से निष्पीत सार तरोरिव, जिस जो पेड़ पूरी तरह से सूख गया है, ऐसे वृक्ष के समान विरहित छाय से, उसमें छांव नहीं मिलती अपने को, पेड़ जब तेज धूप में सूख जाते हैं तो फिर छांव नहीं होती, उसी प्रकार जिनके शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है तपस्या से कि ऐसा लगता है कि जैसे परछाई भी नहीं पड़ सकती इनकी, तो त्वगस्थि शिरा जाल मात्र तनु यंत्रस्य, उनका शरीर रूपी यंत्र जो है वो कैसा हो गया है, त्वक यानी त्वचा, अस्थि यानी हड्डी, और शिरा जाल मात्र नसें हैं, सिर्फ नसें त्वचा और हड्डियां जिनकी रह गई हैं, ऐसे साधु के प्राणात्यये सत्य प्याहार वसति बेशजादीनि दीनाभिधान मुख वैवर्ण्य वैवर्ण्यांग संज्ञादि भी अयाचमानस्य। प्राणों का अंत होने पर भी आहार आवास और औषध आदि को दीन कथनों के माध्यम से, दीन मुख मुद्रा के माध्यम से, मुख वैवरण यानी चेहरा एकदम उदास और आकुल व्याकुल बना करके, और अंग संज्ञा शरीर की संज्ञा का अर्थ होता है गेस्चर्स, संकेत इशारे आदि के द्वारा अयाच मानस नहीं मांगने वाले, भिक्षा कालेपि विद्युदुद्योधवत, भिक्षा के समय भी बिजली चमकने के समान दुरुपलक्ष मूर्ते ही, वो कब आए कब चले गए ढूंढ पाना भी जिनका कठिन है, ऐसे साधु के याचना परिशह सहनम अवसीयते, याचना परिशह पर विजय निश्चित होती है। वायुवद असंगानेक देशचारिणो व्युपगतैक काल संभोजनस्य वाचन्यमस्य तत्समितस्य वा। वायु के समान निष्परिग्रह अनेक स्थानों पर विचरण करने वाले और स्वीकार किया है एक काल का समीचीन भोजन जिन्होंने, ईष्णा समिति से एक भुक्तिपूर्वक आहार जिनका आजन्म स्वीकृत किया गया है, वे वाचन्यमस्य तत्समितस्य वा, उस आहार के समय वाचन्यमस्य यानी मौन अथवा तत्समितस्य वा, समिति पूर्वक कुछ बोलना हो कभी तो बोल भी लें, पर सकृत स्वतनुदर्शन मात्र तंत्रस्य, एक ही बार वो चौके के सामने अपना शरीर दिखलाते हैं और पाणिपुट मात्र पात्रस्य, अंजलि का जो पुट मात्र है वही जिनका पात्र है, ऐसे साधु के बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु भिक्षामनवाप्य, बहुत दिनों तक और बहुत घरों तक भिक्षा को न प्राप्त करके असंक्लिष्ट चेतस, जिनके चेतस में कषायें तीव्र कषाय उत्पन्न नहीं हो रही है, असाता बांधने का वाला भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो दात्र विशेष परीक्षा निरुत्सुकस्य, जो खास दाता होते हैं जिनके यहाँ पर अंतराय नहीं होता और अच्छे से आहार हो जाते हैं, उनकी परीक्षा के प्रति निरुत्सुक है कि उनके यहाँ जाए तो आहार अच्छा हो जाएगा, उनके बारे में कोई उनको उत्साह ही नहीं है किनके यहाँ अच्छा होगा किनके यहाँ नहीं होगा, उनका उसके प्रति उत्साह नहीं है। लाभाद प्रलाभों में परम तप इति, लाभ से बढ़कर तो अलाभ मेरे लिए परम तप है, इति संतुष्ट से, इस तरह संतुष्ट रहने वाले जो साधु हैं उनके अलाभ विजयोग से, यह अलाभ पर विजय निश्चित कर लेना। सर्वाशुचि निधानमिदं अनित्यम अपरित्राणमिति शरीरे, ये सब अशुचियों का भंडार है, अनित्य है, अपरित्राण है अर्थात इसकी रक्षा नहीं हो सकती शरीर की, तो ऐसे शरीरे शरीर के प्रति निःसंकल्पत्वात्, ये मेरा है इस प्रकार के भाव से रहित होने के कारण, विगत संस्कारस्य, अपनी चीज हो तो उसको संभाले और सजाए, ये मेरा नहीं है इसलिए उसमें कोई सजावट नहीं कर रहे शरीर में। गुण रत्न भांड संचय प्रवर्धन संरक्षण संधारण कारणत्वात् अभ्युपगत स्थिति विधानस्य अक्षमरक्षणवत् व्रणालुलेपनवत् वा बहुप కారం ఆహారం అభ్యుపగచ్చతో విరుద్ధాహార పాన సేవన వైషమ్య జనిత వాతాది వికార రోగస్య. अब शरीर का विशेष ध्यान नहीं रखते, गुण रूपी जो रक्त हैं उनके भांड यानी भरे हुए जो बर्तन हैं उनके संचय में, उनके प्रवर्धन में, उनके संरक्षण में, उनके संधारण में कारण भूत होने से उन्होंने एक ही बार खड़े होकर के आहार स्वीकार किया हुआ है कि हम आहार जब भी लेंगे तो एक बार खड़े खड़े ले लेंगे और आ जाएंगे. वे अक्षम रक्षण के समान, यानी जैसे कोई व्यापारी रत्नों से भरी हुई गाड़ी लेकर के जाता है तो रास्ते में गाड़ी के चक्कों में आवाज़ आने लग जाती है तो उसमें तेल और ओंघन डाल देता है, वैसे ये तीन रत्नों की गाड़ी लेकर साधु जा रहे हैं मोक्ष नगरी की तरफ, तो खाली पेट होता है तो आवाज़ आती है इसमें, तो उसमें थोड़ा भोजन ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीस वगैरह. अथवा व्रणानुलेपन, कोई घाव हो जाता तो उसके ऊपर कोई चंदन या कुछ भी लेप लगा दिया जाता है उसके समान. तो बहुपकार आहार जिससे अत्यधिक उपकार हो उस आहार को स्वीकार करने वाला अभ्युपगच्छता. और विरुद्ध आहार पान सेवन, कभी ऐसी स्थिति बनती है कि देने वाला कुछ ऐसा आहार दे देता है कि जो उनकी प्रकृति के लिए विरुद्ध हो जाता है, कोई पान यानी पीने की वस्तु ऐसी दे देता है कि जिससे इनको तकलीफ हो जाती है, तो इनके सेवन से वैषम्य विषमता से जो आहार दे दिया गया है उसकी विषमता के कारण जनित उत्पन्न हुए वात आदि विकार रोग से, वायु आदि संबंधी के विकार से ये रोग हो जाते हैं. तो ऐसे रोगी साधु के युगपद अनेक शत संख्य व्याधि प्रकोपे सत्यपि, एक साथ अनेक सैकड़ों व्याधियों का प्रकोप होने पर भी तद वर्ष वशवर्तिता विजहत, तद वशवर्तिताम विजहत, वो व्याधियों के वशीभूत नहीं होते, उनके प्रभाव को छोड़ते हुए जल औषधि प्राप्त्याद्यनेक तपो विशेष अर्धि योगे सत्यपि. और जल औषधि नाम की जो प्राप्ति यानी लब्धि है, रिद्धि है, उसको आदि लेकर के जो अनेक तपश्चरण विशेष से होने वाली रिद्धियों का योग होने पर भी ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं कि जिससे वो अपना अपना रोग ठीक कर सकते हैं. सनत कुमार मुनिराज की कथा में आया था ना कि उनको कितनी व्याधियां थी, उनको किसी ने ऐसा आहार दे दिया था कि सैकड़ों व्याधियां हो गई थी, 700 व्याधियां हुई थी, वड्डाराधना में लिखा है. और उन 700 व्याधियों को उन्होंने 100 साल तक सहन किया, 100 वर्ष. और जब उपचार की बारी आई तो फिर ऐसी कुछ वार्तालाप कर रहे थे वो, तो उनके मुख से रोगी तो थी तो एक बूंद ऐसे टपक गई नीचे, तो जो जिस त्वचा पर जहां पर पड़ी वो बूंद वो हिस्सा स्वस्थ हो गया. विप्रुष औषध नाम की रिद्धि होती है, तो विप्रुष यानी जो मुख से निकलने वाले कण होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, वो औषध हो जाते हैं और उससे ठीक हो जाते. तो फिर वो उन देवों से जो परीक्षा लेने आए थे उनसे कहते हैं कि आप जिस रोग को ठीक करने का कह रहे हैं उसकी औषध तो मेरे पास है, पर मुझे इससे जो बड़े रोग हैं वो ठीक करने थे. तो वो पूछते हैं कि कौन से रोग हैं, बोले जन्म जरा और मरण. तो वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि उसका उपचार तो आपके ही पास है, हम लोग तो देव गति में हैं, हम क्या उपचार करेंगे उसका. फिर वो ऐसी कथा आती है, तो उनका होने पर भी शरीर निष्प्रहत्वात शरीर के प्रति निष्प्रिय होने के कारण तत् प्रतिकारान न पेक्षिण, उसके प्रतिकार की अपेक्षा नहीं रखने वाले जो साधु हैं उनके रोग परिशह सहनम अवगंतव्यम, रोग परिशह पर विजय जान लेना। जैनम जयतु शासनम।